मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, शायद आपको डेफिनेटली तौर पर मजा आ रहा होगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा हो तो इसे मैं अपनी सफलता मानता हूं। लेकिन एक बात तो है जिस पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, और वो ये कि हो सकता है कि मेरी बात में मजा न आ रहा हो, लेकिन जरूरी है। यदि आप इसे एक बार समझ लेते हैं और समझने के बाद अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप पाएंगे कि सच में आपके जो जीवन का रास्ता है वो कितना सुखमय हो जाता है, कितना आसान हो जाता है। और सच बात तो यह है कि जो मंजिल है वह भी कितनी सुनिश्चित हो जाती है, यानी कि इंश्योर्ड हो जाते हैं आप। तो आइए अब जो तीसरा सिद्धांत है, जो आखिरी सिद्धांत है डार्विन का, उस पर हम लोग बात करते हैं। यहां मैं आपको एक सीधी सी सच्चाई बताना चाहूंगा, और वो ये कि मैं डार्विन के सिद्धांत पर बात तो कर रहा हूं, लेकिन मैं डार्विन के सिद्धांत के बारे में नहीं बता रहा हूं। डार्विन के सिद्धांतों को मैं सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, या ये कह लीजिए कि एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें तीन पायदान लगे हुए हैं। दो पायदान पर हम लोग चढ़ चुके हैं और तीसरे पर आज हम लोग पैर रखने जा रहे हैं। इसके जरिए मैं खासकर हम लोग कैसे अपने आप को समझें, कैसे अपने में परिवर्तन करें, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। राइट, तो अब हम तीसरे पायदान पर दोस्तों पैर रख रहे हैं, और वह है सेलेक्शन ऑफ नेचर। कहीं कहीं आपको सेलेक्शन बाई नेचर भी मिलेगा, लेकिन बहुत जो पॉपुलर वर्ड इस पर जो मिलता है वह है नेचुरल सेलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। हिंदी में इसे हम कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। आप जानते हैं कि डार्विन ने यही तो बताया है ना कि किस तरीके से प्रकृति का विकास हुआ है और मानव जीवन का विकास हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, फिटनेस तो हम अपनी तरफ से कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम फिट रहें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन याद रखें कि यही सब कुछ नहीं है, एक और छोटी सी चीज बाकी रह जाती है, और वह है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर भी सेलेक्ट करती है। मैं तो अपनी तरफ से अपने को पूरी तरह से फिट कर रहा हूं, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला है या जिसको मेरे बारे में निर्णय लेना है कि मैं इसे नौकरी पर रखूं या नहीं रखूं, या इसे मैं यह काम दूं या नहीं दूं, उसके हाथ में है मेरा चयन करना। मेरे हाथ में जो था मैंने किया, मैंने अपना फिटनेस ठीक रखा, उसे बढ़ाया, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। चयन करने वाला कोई दूसरा है, यानी कि जो फाइनल डिसीजन है वो किसी दूसरे के हाथ में है। डेफिनेटली अगर मैं फिट नहीं रहूंगा तो पहली बात तो यह है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, वहां इंटरव्यू में ही नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर चलिए मैंने इंटरव्यू में अपने को जाने लायक सिद्ध कर दिया है, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं ये मान करके चलूं कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा। नहीं, अभी थोड़ा सा कुछ संदेह है। दोस्तों, अगर हम इसे गीता के जरिए समझने की कोशिश करें तो गीता में बहुत अच्छी बात कही गई है। कोई भी काम कैसे होता है, गीता में कुछ श्लोक ऐसे मिलते हैं, उसमें चार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने पांच तत्व बताए हैं सफलता के, पांच तत्व, या कोई भी कार्य कैसे सिद्ध होता है उसके पांच तत्व बताए हैं। मैं चार तत्वों को छोड़ रहा हूं क्योंकि नहीं तो हम लोग भटक जाएंगे। जो पांचवा और आखिरी तत्व है उसे गीता में संयोग कहा गया है। संयोग, ये शुरू के जो चारों हैं ये सब तो आपके हाथ में है, लेकिन जो पांचवा है संयोग, वो आपके हाथ में नहीं है। अब ये जो मैंने कहा कि चयन करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसी और के पास है, ये आपके हाथ में नहीं है। यहां बहुत से संयोग काम करते हैं, कोइंसिडेंसेस काम करते हैं, उस पर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है। नेचुरल सिलेक्शन कहने का मतलब है कि ये जो नेचर है ये सेलेक्ट करती है, इसके पास अधिकार है सेलेक्ट करने का। कि अगर जब नेचर के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो होगा कि उसे किसे जीवित रखना है, उसे किसे नष्ट कर देना है, उसे किसे मॉडिफाई करना है यानी कि परिवर्तित कर देना है, ये सब नेचर करती है। प्रकृति अपनी तरफ से निर्धारित करती है कि क्या किया जाना चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि नेचर कितनी चीजों को खत्म कर देती। अगर हम कोरोना की बात लें तो आप देखिए ना, कि बहुत से युवा जो बहुत ही फिट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, शारीरिक रूप से सक्षम हैं, जिनका इम्यून पावर भी बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं बच पाए, तो प्रकृति ने उनका चयन नहीं किया सर्वाइवल के लिए। उसके दूसरे बहुत से रीजन हो सकते हैं, सैकड़ों रीजन हो सकते हैं। तो प्रकृति बताती है कि मुझे किसे रखना है, और बताने का उसका तरीका यह है कि उसे फिर वो अपने ढंग से ढालने लगती है। उदाहरण के तौर पर चलिए हम एक बात ले लें, ऊंट को आप ले लीजिए, कि प्रकृति ने फैसला किया कि मुझे इस रेगिस्तान में भी कुछ तो जानवर में बना दूं, तो उसने ऊंट की रचना की। अब ऊंट का उसने निर्माण किया है तो उसके अनुकूल किया कि भई ये ज्यादा दिन तक बिना पानी पिए रह सके, उसके पैरों को गद्देदार बना दो ताकि वो बकायदे रेत में चल सके, उसकी गर्दन को लंबी बना दो क्योंकि जो रेगिस्तान है देखिए वहां तो केवल कटीली झाड़ियां ही मिलेंगी, नीचे तो घास उसको चरने को मिलेगी नहीं, तो उसकी गर्दन को थोड़ा लंबा कर दे ताकि वो ऊपर से जो कटीली झाड़ियों में जो पत्ते होंगे या और भी जो इस तरह के पेड़ होंगे जिनमें पत्ते ऊपर की ओर लगे हुए होंगे उन्हें खा करके वो अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सके। तो प्रकृति भी अपने ढंग से चयन करती है, और वो किस तरीके से चयन करती है उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने अभी आपके सामने रखा है। अभी इस पर और बातें करेंगे, मुझे इजाजत दें, नमस्कार।